स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई कुछ पुरानी, कुछ जानी कुछ अनजानी। हिंदी सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान देने में एक इंसान का नाम बार बार उभर कर आता है, ख्वाजा अहमद अब्बास। राज कपूर की बेहतरीन फिल्में इन्होंने लिखी, आवारा, श्री 420, जागते रहो, मेरा नाम जोकर, बॉबी, हिना। भारत का नियो रियलिस्टिक सिनेमा भी ऑडियंसेस तक वो लाए जब उन्होंने चेतन आनंद के लिए लिखी नीचा नगर और बंगाल के अकाल पर बनाई फिल्म धरती के लाल। इसके अलावा कहानियां, उपन्यास इतने लिखे कि कई तो समय के साथ खो गए। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में एक सी कुशलता से लिखते थे ख्वाजा अहमद अब्बास। फिल्म जर्नलिज्म भी उनका बेशुमार था। उनका कॉलम लास्ट पेज हिंदुस्तान का सबसे लंबा चलने वाला कॉलम था, जो 1935 में शुरू होकर 1987 में उनके इंतकाल तक बराबर 52 वर्षों तक अलग अलग पत्रिकाओं में छपता रहा। आज का लेख सिनेमा के पर्दे के पीछे की कहानी, जिसमें खुद एक आला और मशहूर राइटर होते हुए भी आम तौर पर लिखी फिल्मों पर वो मजाहिया कमेंट्री करते हैं और साथ ही अपने समय की एक मशहूर अदाकारा का किस्सा बड़ी इज्जत और मोहब्बत से सुनाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह पुरानी हिंदी फिल्मों के शौकीन हैं तो गैस करके बताइए कि ये एक्ट्रेस कौन है। आइए सुनते हैं ख्वाजा अहमद अब्बास का लिखा ये आर्टिकल कायाकल्प। फिल्मों की अपनी एक अलग दुनिया होती है, एक अलग जुबान होती है। फिल्मों के कैरेक्टर अन्य इंसानों से भिन्न होते हैं। एक तो हीरो होता है, ये या तो लंबा होता है या ठिगना, या दाढ़ी मूछ सफाचट होती है, या उसकी मूछें जेट हवाई जहाज की तरह पतली और लंबी होती हैं। हीरो की दाढ़ी कभी नहीं होती। वैसे हीरोइन या विलन को धोखा देने के लिए कभी कभी नकली दाढ़ी लगाकर हीरो हकीम साहब या मौलाना या सरदार जी बन जाता है। हीरो आमतौर पर सिर्फ इश्क करता है, काम नहीं करता। कभी कभी हीरो डॉक्टर या बैरिस्टर या टैक्सी ड्राइवर भी होता है, लेकिन ये काम भी वो इश्क की खातिर करता है। डॉक्टर इसलिए बनता है कि हीरोइन या उसके शौहर यानी रकीब का इलाज कर सके। बैरिस्टर हुआ तो अदालत में हीरोइन को कत्ल के झूठे इल्जाम से बचा लेता है, और टैक्सी ड्राइवर तो वो बनता ही इसलिए है कि कोई हसीना उसकी टैक्सी में बैठे और वो मीटर डाउन करता जाए और फिर हीरोइन टैक्सी में अपना बटुआ और अपना दिल भूल जाए। एक हीरोइन होती है, ये या तो बहुत दुबली होती है या बहुत मोटी होती है। हीरोइन कभी गरीब नहीं होती। वो इसलिए कि उसे हर सीन में एक नया और महंगा फैंसी ड्रेस पहनना होता है। सीन नंबर एक में शलवार कमीज, सीन नंबर दो में भरतनाट्यम की साड़ी, सीन नंबर तीन में चूड़ीदार पजामा और कश्मीरी चांदी के बटनों वाली कमीज, सीन नंबर पाँच में राजस्थानी घाघरा और चोली, सीन नंबर छः में नाप से 6 इंच नीची साड़ी और नाप से 9 इंच ऊंची बिकिनी टाइप की चोली, सीन नंबर 7 में मिनी स्कर्ट और चुस्त स्वेटर, और गलती से कभी गरीब बाप की बेटी हुई तब भी हीरोइन नायलॉन की ओढ़नी और रेशमी घाघरा और चुस्त चलूका पहने होगी, ताकि दूर से मालूम हो जाए कि हीरोइन के बाप को विलन का कर्जा देना है और हीरोइन हर कुर्बानी के लिए तैयार है। एक विलन होता है, ये तो चारखाने की शर्ट, ब्रिजेस और घुटनों तक के राइडिंग बूट पहने होता है और हाथ में एक हंटर होता है, या वो काली शेरवानी और चूड़ीदार पाजामा पहने हुए रहता है। उसके सिर पर तिरछी टोपी धरी होती है और उसके मुंह में ये लंबा सोने का सिगरेट होल्डर होता है। गर्मी में कभी विलेन हाथों में सफ़ेद दस्ताने पहने होता है और काला ओवरकोट, कॉलर ऊपर किए हुए, और काली फेल्ट हैट जिसका छज्जा आंखों पर झुकता है ताकि पुलिस शिनाख्त ना कर सके। विलेन का कोई नाम और कोई मजहब नहीं होता। उसके छुटभइये उसे सिर्फ बॉस कहकर पुकारते हैं। ये इसलिए कहा जाता है कि किसी मजहब या फिरके वालों की दिल शिकनी ना हो। एक वैम्प होती है जिसे लेडी विलन भी कहा जाता है। पहले जमाने में हीरोइन सीधे सादे कपड़े पहनती थी और उसके मुकाबले में वैम्प चुस्त, शोख और फैशनेबल कपड़े पहनती थी। मगर आज के ज़माने में हीरोइन और वैम्प में पहचान करना मुश्किल हो गया है। आम तौर पर वैम्प डांसर होती है, लेकिन आजकल हीरोइनें भी डांस करने लगी हैं, और मौके पर नहीं तो अपनी सालगिरह की पार्टी ही में डांस पेश करती हैं। ऐसी हालत में वैम्प की अहमियत कम होती जा रही है। मगर फिर भी वैम्प वो होती है जो हीरो को लुभाने के लिए नाज, नखरे और आंखों के इशारे से आजा आजा गले लग जा किस्म का गाना गाती है। विलेन से तनख्वाह लेती है लेकिन दिल से हीरो को चाहती है, और आखिर में विलेन जिस गोली से हीरो को मारना चाहता है उस गोली से वैम्प की मौत होती है, मगर हीरो के आगोश में। आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया, ये आखिरी सांस के साथ कहती है और उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो जाती हैं। वैसे फिल्म में अन्य एक्टर भी होते हैं, मसलन साइड हीरो जो आमतौर से हीरो का दोस्त होता है, और साइड हीरोइन जो हीरोइन की सहेली होती है और साइड हीरो से मोहब्बत करती है। इसके अलावा साइड विलन या विलन का असिस्टेंट होता है, फिर एक कॉमेडियन होता है और एक उसकी माशूका। मगर इस वक्त हम एक वैम्प की कहानी सुनना चाहते हैं। उसका नाम रानी बाला था। कभी वो हीरोइन हुआ करती थी, मगर इधर कोई 8-10 बरस से वो वैम्प का कैरेक्टर कर रही थी। हीरोइन तो वो मामूली थी, कभी सी क्लास फिल्मों से आगे नहीं बढ़ी, लेकिन वैम्प बनकर उसने बड़ा नाम कमाया था। थी बला की खूबसूरत। उसका जिस्म किसी मूर्तिकार का तराशा हुआ लगता था। उस पर कपड़े इतने चुस्त पहनती थी कि लगती थी कपड़े उसने पहने नहीं बल्कि उसके शरीर को उनके अंदर ढाल दिया गया है। आंखें बड़ी बड़ी और खूबसूरत थीं, बाल घने और घुंघराले। आकृति अजंता एलोरा की किसी मूरत की याद दिलाती थी। रानी बाला कितनी ही हीरोइनों से ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो उसके साथ काम करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उसे अपनी फिल्म में लेना कामयाबी की जमानत समझते थे। कहा जाता था कि बी क्लास हीरोइन के साथ रानी बाला को ले लो तो फिल्म ए क्लास की कीमतों पर बिकती है। हीरो भी उसके साथ काम करना पसंद करते थे क्योंकि उसकी शख्सियत इतनी दिलकश थी कि सेट पर उसके होते हुए कोई हीरोइन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। इसके अलावा वो बड़ी खुशमिजाज थी, बातें बड़ी दिलचस्प करती थी, और फिल्मी दुनिया के बारे में उसको हजारों लतीफे और चुटकुले याद थे। रानी बाला के बारे में मशहूर था कि जैसी वो सिनेमा के पर्दे पर नजर आती है, अपनी प्राइवेट जिंदगी में बिल्कुल उसके प्रतिकूल है। जो डायरेक्टर या हीरो उससे ज़रूरत से ज़्यादा बेतकल्लुफी करने की कोशिश करते थे, उनसे वो कह देती थी, आपने मेरे शौहर को नहीं देखा, वो बॉक्सिंग का चैम्पियन है और पहलवान भी, 70 इंच का सीना है उसका, और फिर कोई उसके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वैसे उसका कहना था कि कैमरे के सामने मुझसे जो चाहे करा लीजिए, उस वक्त मैं आपकी नौकर हूं, मगर उसके बाद मेरे जिस्म का मालिक मेरा शौहर है। उसका शौहर बॉक्सिंग चैंपियन था या पहलवान था कहा नहीं जा सकता क्योंकि किसी ने उसको देखा नहीं था। रानी बाला ने कभी किसी से उसका परिचय नहीं कराया था। उसका कहना था कि मैं स्टूडियो को घर नहीं ले जाती, ना घर को स्टूडियो में लाती हूं। सभी फिल्म आर्टिस्टों में वो एक थी जिसके साथ किसी ने नानी, दादी, बाप, माँ, मामू, भाई, बहन या आया किसी को स्टूडियो में आते नहीं देखा था, ना वो स्टूडियो वालों को कभी अपने घर आने की दावत या इजाज़त देती थी। जब शूटिंग हो टेलीफोन कर दो, वक्त पर मोटर भेज दो। मोटर का हॉर्न सुनते ही रानी बाला अपना मेकअप बॉक्स और अपना टिफिन कैरियर दोनों हाथों में लिए हुए बाहर जाएगी और मोटर में सवार हो जाएगी। उसके घर में कौन रहता है, कितने आदमी हैं, ये किसी को मालूम नहीं था। लोगों को ये मालूम था कि उसका एक शौहर है, शायद एक बच्चा या बच्ची भी है, क्योंकि एक स्टूडियो ड्राइवर ने एक अंदर से बचकाना आवाज़ को बाय बाय मम्मी कहते हुए सुना था। मगर किसी पब्लिक समारोह में, मुहूर्त हो या प्रीमियर, किसी ने उसके शौहर या औलाद को उसके साथ ना देखा था। अब इन बातों को बरसों बीत चुके थे और रानी बाला के घर का राज राज ही रहा था। लोग कभी कभी रानी बाला की उम्र का अंदाजा लगाते थे कि उसको फिल्मों में काम करते हुए कम से कम 15 बरस हो गए हैं, अब उसकी उम्र 30-32 बरस हो गई होगी, मगर कमबख्त अब भी जवान बल्कि नौजवान लगती थी। एक बार जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लेते हुए सवाल कर ही डाला, मिस रानी बाला, आपकी उम्र क्या है, आपको कितने बरस की लगती हूं? बस तो आप 19-20 बरस की समझ सकते हैं। एक्ट्रेस की कोई उम्र नहीं होती, वो उतनी ही जवान या बूढ़ी होती है जितनी सिनेमा के पर्दे पर नजर आती है। रानी बाला सदा मेकअप करके स्टूडियो आती थी, बगैर मेकअप किसी ने उसको आज तक नहीं देखा था। इस सिलसिले में भी वो अपने विशिष्ट फलसफे को प्रकट करती थी। औरत घर में रहती है, स्टूडियो में जो आती है वो एक्ट्रेस होती है। एक्ट्रेस को सदा अपनी शक्ल सूरत का ख्याल रखना चाहिए। मुझे उन एक्ट्रेसों से सख्त नफरत है जो रात भर पार्टियों में मारी मारी फिरती हैं और सुबह को उलूल जलूल मनहूस सूरत बनाए स्टूडियो में आती हैं, बाल बिखरे हुए, आंखों में कीच, दांत गंदे, होंठ सूखे हुए। फिर उनका मेकअप करने और बाल बनाने में 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं। उसके बाद वो इस काबिल होती हैं कि उनको कैमरे के सामने खड़ा किया जा सके। एक दिन जो सीन लिया जाने वाला था, उसमें हीरो और हीरोइन एक तालाब के किनारे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। वैम्प वहां चोरी छिपे आती है और एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनकर जल रही है कि गुस्से में पीछे हटती है और धड़ाम से पानी में गिर जाती है। डायरेक्टर इस तरह वैम्प को कॉमेडी सीन में पेश करना चाहता था और उसके कहने के अनुसार ये एक अछूता और अनोखा टच था। मिस रानी बाला, क्या आपको तैरना आता है? पानी 5 फुट गहरा है, डायरेक्टर ने स्टूडियो में बने हुए तालाब की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं डूबूंगी तो आपको साथ लेकर, रानी ने तत्काल जवाब दिया और इस पर स्टूडियो में कहां गूंज उठा। रानी बाला को गर्व था कि आज तक उसने कोई सीन करने से इनकार नहीं किया, चाहे वो कितना ही मुश्किल हो। जहां जान का खतरा हो वहां भी वो किसी दूसरी एक्ट्रेस को डबल के तौर पर काम करने की इजाजत ना देती थी। आग का सीन हो या दीवार पर से कूदना हो या घोड़े पर सवार होकर उसे सरपट दौड़ाना हो, हर सीन वो खुद ही करती थी। वो फिल्म लाइन में उस वक्त आई थी जब हीरो हीरोइन को तैरना, तलवार चलाना, मोटर चलाना और घूंसा चलाना सब कुछ सीखना लाजमी था। वो पानी में गिरने के लिए फौरन तैयार हो गई। सीन से पहले डायरेक्टर ने ड्रेस मैन से कहा, मिस रानी के लिए ऐसे ही 2-4 ड्रेस और तैयार रखो, शायद पहला शॉट ओके ना हो। सीन लिया गया। रानी बाला बड़े अंदाज से पीछे हटी, चेहरे पर गुस्से और जलन की अवस्था थी और वो अवस्था आखिरी लम्हे तक बाकी रही जब तक वो पानी में गिरी नहीं। गिरते गिरते उसने अपने कैरेक्टर के अनुसार बनावटी हास्यास्पद अंदाज से चीख मारी। तालाब में गिरने के बाद जब उसका सिर पानी से बाहर निकला तो उसने मुंह से कुल्ली का एक फव्वारा निकाला और हीरो हीरोइन की तरफ गुस्से से मुक्का उठाया। डायरेक्टर ने कहा, कट। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।